ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण समृद्धि के दोहरे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर आज एक बजट पश्चात वेबिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का सरकार का संकल्प बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं जहां किसान समृद्ध और सशक्त बने। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी किसान पीछे न छूटे। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सशक्त करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, जिसमें सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने 8 मार्च से राज्य के सभी मार्गों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की मौजूदगी में बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों ओर बाड़ लगाने का काम जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मणिपुर में स्थायी शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उत्तराखंड में चमोली जिले के माड़ा गांव में हिमस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 50 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है, बाकी 5 की तलाश जारी है। 4 घायल मजदूरों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति का जायजा लेने और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। तेलंगाना के पर्यटन मंत्री जे कृष्ण राव ने आज कहा कि श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे श्रमिकों में से 8 की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 को कल शाम तक बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और बाकी 4 लोगों को निकालने में 2 और दिन का समय लग सकता है। पिछले शनिवार को सुरंग की छत का एक हिस्सा ढह जाने के कारण परियोजना और साइट इंजीनियरों सहित 8 श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत में ज्ञान के प्राचीन केंद्रों को पुनर्जीवित करने के महत्व पर जोर दिया है। मुंबई में केपीबी हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों का उल्लेख किया, जहां कभी दुनिया भर से विद्वान ज्ञान लेने और देने के लिए आते थे। श्री धनखड़ ने इन प्रसिद्ध संस्थानों के पतन को सदियों के ज्ञान का व्यवस्थित रूप से विलुप्त होना करार दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कॉरपोरेट जगत को शिक्षा में निवेश को परोपकार से आगे बढ़कर देखना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कल होने वाले यूरोपीय रक्षा शिखर सम्मेलन से पहले लंदन पहुंच गए हैं। वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी और अन्य नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के साथ तीखी नोकझोंक के बाद ब्रिटेन पहुंच गए हैं। कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने 29 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 181 रन बनाकर जीत हासिल की। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 38 ओवर और 2 गेंद में 179 रन बनाकर सिमट गई। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। लीग चरण का अंतिम मैच कल दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच के बाद ही सेमीफाइनल के मुकाबले तय होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।